ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक नंबर 43। बाद मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। हे भगवान, जीवन के महत उद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का धर्म श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में उपदिष्ट है। जो मनुष्य आपके आदेशानुसार धर्म का पालन करते हैं, जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी को ऊंच तथा निम्न नहीं मानते, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आप श्री भगवान की उपासना करते हैं। कृपा करके इस अनुवाद को बोलिए। हे भगवान, जीवन के महत उद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का धर्म श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में उपदिष्ट है। जो मनुष्य आपके आदेशानुसार धर्म का पालन करते हैं, जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते और किसी को ऊंच तथा निम्न नहीं मानते, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आप श्री भगवान की उपासना करते हैं। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम लोग इस प्रसंग पर विचार करें। शुरू शुरू में चित्रकेतु जी की स्थिति क्या थी, लेकिन जैसे ही भक्तों की संगति में आए, उनका विचार कैसे बदलना शुरू हुआ। अंगिरा जी और नारद जी के सदुपदेश से उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हुआ और उनके उपदेश के अनुसार उनके जीवन में जो संदिग्ध और मोहयुक्त जो भावनाएं थी, उसका संदिग्धीकरण हुआ, अर्थात उसका विच्छेदन हुआ। तो हम लोग इस प्रसंग से यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि साधुओं की संगति के बिना या भगवत भक्तों के संगति के बिना किसी भी जीव को इस संसार के मोह बंधन से छुड़ाना बहुत कठिन कार्य है। यहां इस प्रसंग में मोह विच्छेदन को किस प्रकार साधु काटे, इसका प्रत्यक्ष हम लोग श्रवण कर चुके हैं। प्रमाण रूप में हम देख सकते हैं कि चित्रकेतु महाराज की स्थिति क्या थी, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में हुआ। केवल उनका प्रत्यक्षीकरण, मतलब उनका दर्शन करने मात्र से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, इसीलिए तो आचार्य लोग लिखते हैं कि दर्शन पवित्र ए तुम्हार। भगवान अपनी सारी शक्ति भक्तों को भी दे देते हैं, क्योंकि भक्त के बिना भगवान भी अपने को अधूरापन की महसूस ही करते हैं। जब उन्हें अपने धाम में, ऐसे तो धाम सुना नहीं है, वहां भी नित्य नवीन लीलाएं चलती रहती हैं, लेकिन भक्तों के संगति में खेले बिना, उनके साथ रहे बिना भगवान भी आनंदमय कहे जाते हैं, लेकिन वो असली सुख की आस्वादन करने में अपने को कुछ कमी महसूस करते हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, कृष्ण बलराम की, गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। इस प्रसंग में, खास करके इस अध्याय के अंदर, जैसे ही उन्होंने संकर्षण अरे नारद जी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण उन्होंने किया, सात दिन सात रात्रि तक, तो उनके जीवन में और तीव्रता आई। उनका जो भक्ति योग की जो इच्छाएं थी और तीव्र हो गई। और संकर्षण देव जैसे ही उनके सामने प्रकट हुए तो स्तुति करना उन्होंने शुरू किया। भगवान के प्रार्थना से बढ़ के, भगवान की स्तुति करने से बढ़ करके और कोई उपाय ही नहीं है किसी के पास तो भगवान को खुश कर सके। ये सोचिए हम भगवान को क्या दे सकते हैं। सबय भूमि गोपाल की सब कुछ उनकी ही है तो हम बीच में कहां से देने वाले आ गए। लेकिन एक चीज हम उनको दे सकते हैं, जिस शरीर की अभिनिहित करके कि यह मेरा है या मेरी है, और उसमें जो अपनत्व की जो भावना है उस भावना को हम भगवान को दे सकते हैं। और भावना वह है कि उस उत्तम कोटि की भावना से हम उनकी केवल प्रशंसा करें लेकिन उल्टी दिशा में चलते हैं हम लोग। और यही कारण है कि आज तक अपने जीवन में कुछ प्रगति की स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर पाए। इसमें रुकावट का एक ही कारण है कि जिसकी प्रशंसा जिस भाव से करनी चाहिए, जिस भाव से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजन पाठन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, आज तक हमने उस भाव से किया नहीं, इसलिए वही के वही है। चित्रकेतु महाराज इस अध्याय के अंदर 15 श्लोक प्रार्थना रूप में बोले और प्रार्थना के श्लोकों में उन्होंने यह उद्बोधित किया है, हम लोगों को जगाया है कि हे भक्त पथ पर, हे भक्ति पथ पर चलने वाले साधु, सावधानी से कान खोल करके सुन लीजिए कि भागवत धर्म क्या है। अगर भागवत धर्म की विवेचना की जाए, वर्णन की जाए, विशेष वर्णन किया जाए तो कृष्ण के अलावा, कृष्ण के नाम के अलावा, कृष्ण धाम के अलावा और कृष्ण के वचन के अलावा और कोई धर्म ही नहीं है। जो कृष्ण बोलते हैं वही धर्म है, जो कृष्ण ने शास्त्र में अनुमति नहीं दिया है अगर उसको हम पालन नहीं करते हैं, अगर बताए हुए नियम का पालन करते हैं तो वह तो नियम है, वही असली धर्म है, और जो नहीं पालन करते हैं वही अधर्म है। इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दे करके भी हमें जीने के लिए गीता और भागवत दिया है। लेकिन हम लोग विषयांतर के वेग में अपने को इतने धारावाहिक की स्थिति में बहा रहे हैं या बहते जा रहे हैं कि भगवान की उस गंभीरतामयी वाणी को हम समझ नहीं पा रहे। असली भागवत धर्म को हम तब समझ पाते हैं जब भगवान के कही ही बात को हम ठीक से सुने, उनके बताए हुए पथ पर चले, यही असली धर्म है। कल के श्लोक में आप लोग सुन रहे थे कि भागवत धर्म की विवेचना करते हुए उस श्लोक में कहा गया था कि धर्म हम उसको नहीं कह सकते जिसको स्वीकार करने से दूसरे के प्रति द्वेष हो। धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। अगर धर्म की वास्तविक परिभाषा पढ़ी जाए तो धर्म किसी को तोड़ता नहीं, धर्म किसी को जोड़ता है। और धर्म जोड़ता किससे है, तो जहां से धर्म की शुरुआत होती है उस जड़ से जोड़ता है। इसलिए धर्मी हम लोग जो अपने को मानते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो धार्मिक कार्य करने वाले कर्ता को अपने हृदय से यह भाव जरूर हटा देनी चाहिए कि अगर हम उस धर्म के कार्य से अगर भगवान की संतुष्टि नहीं कर पाते हैं, तो महसूस यह कर लेना चाहिए कि हम वास्तव में धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में ही कहा गया है कि वर्ण और आश्रम भगवान ने इसलिए बनाया कि वर्ण और आश्रमों के नियम को ठीक से पालन करके हम भगवान के बनाए हुए इस आश्रम को संतुष्ट करें। संसिद्धि हरितोषणम, हम भगवान को संतोष दे सकें, उनको खुश कर सकें, इसलिए भगवान ने वर्ण और आश्रम धर्म बनाया। और वर्ण और आश्रम के नियम को हम ठीक से पालन करते हुए भागवत पथ पर चलते हैं, भगवान की कई वाणी को मानते हैं, तब तो असली भागवत धर्म है। इसलिए भागवत धर्म हम लोग कहते हैं, भक्ति करते हैं, ये हम लोग रोज रटते हैं, लेकिन भागवत धर्म का अर्थ है केवल कृष्ण, कृष्ण को जानना, कृष्ण को मानना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण की ही कई बातों में सन्निहित रहना। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं कि मनुष्य छोटी छोटी कार्यों को भी भक्ति मान लेता है, धर्म मान लेता है, उसको अपना नियम बना लेता है कि मैं भी भक्ति कर रहा हूं। कोई नहाने को भी भक्ति मान लेता है कि हम बिना नहाए नहीं खाते। कोई भक्ति का अंग यह स्वीकार कर लेता है कि मैं नहा करके जब तक हम हनुमान जी के मंदिर में या और किसी मंदिर में नहीं जाते हैं तो हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, इसको भी वह मनुष्य मान लिया है कि यह धर्म है, नहीं करने वाले से तो अति श्रेष्ठ है। लेकिन इस धर्म को भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि यह धर्म जो है अविधि पूर्वकम है। विधि विधान के अनुसार अपनी नित्य क्रिया से निवृत्ति प्राप्त करके हम इन साधनों को गंभीरता से अपने जीवन में प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम अपने असली जीवन के चरित्र को हासिल कर लेते हैं। भागवत के दसम स्कंद में 11वें स्कंद के अंदर भी एक श्लोक आया है कि जिसके अंदर बताया गया है कि जितने भी संसारिक चीजें हैं उनको एक संयमित करने के नियम सिखाए गए हैं। दूसरा धर्म का यह भी परिभाषा है कि इस संसार के सारी स्थितियों से अपने को छुड़ाने का, धीरे धीरे उससे छूटने का प्रयास करना चाहिए। 11वें स्कंद में एक श्लोक आया है जिसके अंदर बताया गया है कि जो विवाह यज्ञ की स्थिति बताई गई है या यज्ञ करने की स्थिति बताई गई है या सौत्रामणि यज्ञ की स्थिति बताई गई है, उससे इन क्रियाओं से यह सीखा जाता है कि हम अपने जीवन को कैसे संयमित कर सकते हैं। शास्त्रों में विवाह की अनुमति इसलिए दी गई है कि हम संयमित नियम से अपने जीवन को कैसे निर्वाह कर सकें, व्यभिचारी पथ पर न चल सकें, इसके लिए विवाह यज्ञ की अनुमति शास्त्र देता है। जैसे कल के श्लोक में आया था कि कहीं कहीं यह वर्णन किया गया है या शास्त्र अनुमति देता है कि पशु बलि की जा सकती है। काली के समक्ष पशु बलि दिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि काली के सामने बकरे को काट करके और केवल मांस ही भोजन बनाए रखने के लिए इस शास्त्र छुट्टी दिया है, ऐसा नहीं है। अगर मांस खाए बिना नहीं रह सकता है जो जीव, उसको उस परिस्थिति में उसके आदत को छुड़ाने के लिए शास्त्र में ऐसी अनुमति दी गई है, न कि प्रतिदिन उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए। तो भागवत यह सिखाता है कि हमें इस मर्त जगत के जो अन्य ग्रहणीय विषय नहीं है उनसे कैसे धीरे धीरे हम छुड़ा सकें, वह तरीका भागवत सिखाता है। इसीलिए भागवतम में कोई कलुष रहित चीज के अलावा कलुष सहित विषय का वर्णन नहीं किया गया। छूटने के लिए और भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए उपाय केवल भागवत में बताए गए हैं, और भगवान का यह वचन है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल कथा सुनने के लिए केवल अपने हृदय में प्रेरणा करता है, चाह करता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में मैं पहले आकर के बंदी बन जाता हूं। केवल सुनने की इच्छा करने मात्र से, और आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सुनता है वो तो भगवान को अपने हृदय में बंदी बनाई रखा है। भगवान हमारे हृदय से कभी दूर नहीं जाते, लेकिन हम लोग दूर करते हैं उनको धक्का मार के। इस हृदय को कौवे का तीर्थ बना लेते हैं, इसलिए भगवान इस हृदय को छोड़ करके, हृदय प्रदेश को छोड़ करके चले जाते हैं। भागवत के अंदर वर्णन है कि इसको हंसों का तीर्थ बनाना चाहिए, इस हृदय को। कौवे के तीर्थ बनाए रखेंगे तो भगवान इस हृदय को छोड़ के चले जाएंगे, और यही इस स्तुति से, इस प्रार्थना से हम लोग सीख सकते हैं किस भाव में, किस प्रकार की मनोधारणा से हम भगवान को अपने हृदय में रख सकते हैं। भागवत के दसम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति आती है, जिस श्लोक को कल मुरली प्रभु कोट किए थे, उसके उस श्लोक के अंदर आया है तनु वांग मनोभी, तीन शब्द। भगवान को जीतने के लिए, जिस भगवान को अजीत कहा जाता है, अजीतोपि, वो विजयी हैं, जीते गए हैं अपने आप से, लेकिन उन विजय प्राप्त जो हासिल हमेशा के लिए विजय प्राप्त किए हैं उनको भी या उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं वह भक्त, जिन्होंने तनु वांग और मनो, तनु मतलब शरीर, वांग मीन्स वाणी, और मनो मतलब मन, शरीर से, वाणी से और मन से, जिन्होंने कृष्ण के चरणों में इन तीनों को सन्निहित किया है, वह अजितोपि त्रस्त्रित्य लोक्याम, जो तीनों लोकों में कभी नहीं किसी के द्वारा जीते गए उन भगवान को जीत लेते हैं, शरीर से, मन से और वाणी से। जो केवल भगवत संबंधी या भगवान के कई बात को जो मान करके चलते हैं, उसी पथ पर चलते हैं, तो भगवान अजीत कहे जाते हैं। जो किसी के द्वारा नहीं जीते जा सकते उनको भी जीता जा सकता है। भक्ति ही ऐसी साधना है। भगवान ने कहा है दशम स्कंद में गोपी प्रसंग में कि मैं उन भक्तों का सदा ऋणी हूं जो मुझे ही अपने जीवन का हार बना लिए। क्योंकि मैं उनके कथना अनुसार ही चलने का मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है वैसे भक्तों के लिए। वही स्तुति यहां चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं कि जो सब तरह से या सब प्रकार से आपको ही देखता है, आप में ही सबको देखता है, वही आपको पहचान पाता है, वही आपको विजय, आपके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। नहीं, भगवान को देखते हुए भी अगर हम कहते हैं कि मैंने किया या मैंने कहा था, तो इसी में हम फंस जाएं। भागवत कहता है या गीता में भी पांचवें अध्याय के अंदर बताया गया है कि जो व्यक्ति मन से भी किसी वस्तु का भोगकर्ता बनता है, अपने को मतलब भोक्ता समझता है, तो वह बंध जाता है। जो कि गीता में कहा गया है कि भगवान सब कुछ सब चीजों के भोक्ता है, भोक्तारम जगतपसानाम सर्वलोक महेश्वरम। इसी भाव से अपने को छुड़ाना है। हम भोग्या हैं, हम भोगे जा रहे हैं प्रकृति के द्वारा, संसार के द्वारा हम भोगे जा रहे हैं, हम भोक्ता नहीं है। जब तक ये भाव नहीं रहेगा कि हम उनके दास हैं, अगर ये भाव रहता है तब तो हम इस संसार में बच पाएंगे। जहां भोक्तापन की भाव आई कि मैं भोक्ता हूं, वहां हम बंधे ही हैं। और इस स्तुति से, इस प्रार्थना से चित्रकेतु महाराज स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि तो इच्छा, तुम्हारे इच्छा से ही सब कुछ हो सकता है। संकर्षण देव से प्रार्थना कर रहे हैं चित्रकेतु महाराज कि तव इच्छा, अगर तुम्हारी इच्छा में अगर हमारी इच्छा मिल रही है तब तो कुछ दूरी नहीं है, नहीं अगर तुम्हारी इच्छा से हम कहीं अलग जाने का प्रयास कर रहे हैं तब तो हमारी बहुत बुरी स्थिति है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि न व्यभिचरते तो इच्छा, अगर तुम्हारे इच्छा से हम स्वतंत्र जाना चाहते हैं तब तो हम आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से है कि आपको भगवान को जीतने का उपाय बता रहे हैं चित्रकेतु महाराज कि अगर आपकी इच्छा में हमारी इच्छा मिल रही है तब तो आप जीते जा सकते हैं, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं जी रहा हूं, आपके कथनानुसार मैं चल रहा हूं। हे भगवान, जीवन के महत्व उद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार महत उद्देश्य यह है कि भगवान ने जो कहा है, उद्देश्य हमारा यह है कि हमें कृष्ण की प्राप्ति करना है और कुछ नहीं चाहिए। और यह किस प्रकार या कहां यह संभव है कि हम किस उपाय से कैसे हम आपको अपना बना सकें, तो प्रभुपाद जी इस अनुवाद में लिखते हैं हालांकि श्लोक में भागवत का नाम आया है तो प्रभुपाद जी अनुवाद के अंदर भगवद गीता को भी उद्धृत करते हैं कि अनुसार मनुष्य का धर्म श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में उपदिष्ट है। जहां से हम इसको हासिल कर सकते हैं कि हम कैसे असली धर्म को जान सके। जो मनुष्य आपके आदेशानुसार धर्म का पालन करते हैं जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं। पिछले वाले श्लोक में बताया गया कि धर्म किसी के अंदर द्वेष पैदा नहीं करता, वे दोष पैदा नहीं कराता है। असली धर्म वह है जो सबको जोड़ता है, किसी भी प्रकार की किंतु परंतु और अंतर वाली बात वहां नहीं रह जाती है। खास करके हम लोगों की धारणा है इस्कॉन वालों की, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हमसे शुद्ध भक्त और कोई नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जिनको आप नहीं पहचान पाते हैं और आप अपने ही आत्मीय बल पे सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरे जैसा शुद्ध भक्त कोई नहीं है, लेकिन नहीं। इसलिए संगति करने की जरूरत है अन्य साधुओं के लिए, यह नहीं कि हम ही शुद्ध भक्त हैं। मुझे यह ग्लानी हो रही थी सुबह सुबह में यह श्लोक में बहुत प्रयास किया कि किस टोन में किस स्वर में उच्चारण किया जाएगा, लेकिन मैं दो तीन लोगों से ऐसे भागवत पढ़ते हुए सुना हूं, पाठ करते हुए ऐसे स्वर में भागवत के श्लोक को गाते हैं, लेकिन वास्तव में सुबह में अगर एक अकेले अगर उन श्लोकों को सुन करके उनके स्वर को पकड़ करके आदमी रोता है कि क्या ये श्लोक गा रहे हैं। किसी भी साधु से हम भगवान को ग्रहण कर सकते हैं अगर वो भगवान को दे रहा है तो, और यह धारणा अपने हृदय से हम लोगों को निकाल लेनी चाहिए कि हम ही लोग शुद्ध भक्त हैं। यही तो कारण है कि हम अन्य साधुओं की संगति नहीं करते। मैं देखा हूं कि मेरे गुरु महाराज के पास वृंदावन के बहुत अच्छे अच्छे महात्मा लोग आते हैं, टीकाओं के अर्थ को मतलब और व्यक्त करने के लिए कि महाराज क्या कहना चाहते हैं, रूप गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं, श्रीधर स्वामी क्या कहना चाहते हैं इस टीका के माध्यम से। तो महाराज कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के कृपा से मैं प्रयास कर रहा हूं कुछ में बताने का। मेरे समझ से यहां यह अर्थ निकलता है, उस श्लोक का वो अर्थ बताते हैं, उन टीका का अर्थ समझाते हैं। भागवत और गीता को किस ढंग से समझा जाए प्रभुपाद ने हम लोगों को सिखाया, लेकिन प्रभुपाद को भी तो कोई सिखाने वाला होगा और अन्य आचार्यों को तो कोई सिखाने वाला होगा। प्रभुपाद से पीछे वाले पीढ़ियों को हम देखें कि वो कहां से सीखे हैं। प्रभुपाद ने तो हम लोगों को दिया, लेकिन एक ही धारा में बहते बहते हम अपने अंदर ऐसे अहंकार पाल लेते हैं, नहीं नहीं मेरे जैसा शुद्ध भक्त कोई नहीं है, यही हम लोगों के गिरने का चांस है। और इस भाव को निकालने का प्रयास करना चाहिए। किसी को ऊंच तथा निम्न नहीं मानने से वे आर्य कहलाते हैं। गीता में श्लोक आया है ना कि जब साधुता की असली साधुता की प्राप्ति हो जाती है तो चंडाल में भी वो भगवान को देखता है, कुत्ते में भी भगवान को देखता है, हाथी में भी भगवान को देखता है, लेकिन व्यवहारिक जगत में व्यवहार में अंतर हो सकता है लेकिन सिद्धांत में अंतर नहीं होना चाहिए।
व्यवहार में अंतर हो जाएगा। व्यवहार को भी ऐसे में स्थापित कर सकते हैं कि किसी को अनुभूति नहीं हो पाए कि नहीं यह मेरे से द्वेष कर रहा। आर्य शब्द की व्याख्या की जा सकती है। आर्य का अर्थ होता है जो मर्यादा से या भगवान के कही हुई बात से कभी बाहर नहीं जाता। आर्य मतलब सभ्य व्यक्ति, जो धार्मिक व्यक्ति कह सकते हैं, जो धर्म के पथ पर सदा चलता है। अब प्रभुपाद जी के भाषा में इस श्लोक का अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करें। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की भागवत धर्म तथा कृष्ण कथा एक ही है, स्पष्ट एक लाइन में सार। कृष्ण कथा ही भागवत धर्म है। जो कथा नहीं सुनता है वो भागवत धर्म पर चल ही नहीं सकता है, यह निर्णय है। जिनकी कथा में रुचि है, भागवत पढ़ने में रुचि है, वही भागवत धर्म के पथ पर चल सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनकर भगवत गीता, श्रीमद् भागवत या अन्य पुराणों, वेदांत सूत्र, इसी प्रकार के वैदिक ग्रंथों से सर्वत्र श्री कृष्ण के उपदेशों को प्रचार करें। लेकिन अन्य पुराणों को अगर हम पढ़ें तो हम थोड़ा भटकना शुरू हो जाते हैं कि अन्य अन्य पुराणों में अन्य अन्य अवतारों की या अन्य अन्य रूपों की विशेष मतलब विवरण की गई है। लेकिन भागवत और गीता में केवल कृष्ण की श्रेष्ठता बताई गई है, और जिसको ग्रंथ राज के रूप में हम जानते हैं, जब भागवत यह घोषणा करता है कि कृष्ण ही भगवान है, तो इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए और इस बात को अपने हृदय में बांध लेनी चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। और लोग कहते हैं कि यह इस्कॉन वालों की कहना है, तो भागवत खोल करके दिखा सकते हैं प्रमाण रूप में कि भैया हम नहीं कह रहे हैं, यह भागवत कह रहा। इस महामंत्र को भी हम लोग अगर जत्र तत्र गाते हैं कहीं, तो लोग कहते हैं कि महाराज ये तो इस्कॉन वालों का मंत्र है, हरे कृष्ण हरे रामा मंदिर वाले गाते हैं। लेकिन यह हम लोगों का बहुत ही संपत्ति नहीं है, यह हमारे लिए ही है, यह सबका है। लेकिन जो विधर्मी है, जो भटक चुके हैं, वो लोगों की धारणा यह है कि नहीं, यह हरे कृष्ण वालों का मंत्र है, हरे कृष्ण हरे रामा वाले गाते हैं, इस सबके लिए। सभ्यता में अग्रगणी आर्य लोग भागवत धर्म का पालन करते हैं। 5 वर्ष के होते हुए भी प्रहलाद महाराज ने कहा भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 1ले श्लोक में, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता ने दुर्लभम मानसम जन्म तदप्यम ध्रुव अर्थदम। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का उपदेश उस समय करते जब कक्षा में अध्यापक नहीं होते थे। उनका कथन है कि बच्चों को 5 वर्ष की आयु से ही भागवत धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है और इस विषय को समझने के लिए प्रभुपाद जी का यह सारगर्भित तात्पर्य यह अटल भावना पैदा करते हैं कि अगर होश में हम आ गए बचपन में भी, अगर भक्ति पथ पर चल दिए, तो यह छाप कभी जाती नहीं। क्योंकि भगवान का यह वचन है कि अगर हम भक्ति कर लेते हैं तो कभी हम विपत्त को भी अगर पकड़ लेते हैं तो फिर वही पहले की हुई भक्ति मुझे खींच करके फिर से भक्ति में ला देती है। इसलिए शास्त्र यह अनुमति देता है, हमारे आचार्य महाजन लोग भी यही कहा करते हैं कि भक्ति शुरू से ही करनी चाहिए। उदाहरण में प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज की प्रस्तुति कर रहे हैं। भागवत धर्म का अभिप्राय है श्री भगवान के आदेशानुसार जीवन बिताना। अगर भागवत धर्म का आसान परिभाषा देखी जाए तो यह है कि भगवान जो कहते हैं वही धर्म है, और भगवान की कही हुई बात को हम जब नहीं मानते तो वो अधर्म है। भागवत धर्म का अभिप्राय है श्री भगवान के आदेशानुसार जीवन बिताना। हम देखते हैं कि भगवद गीता में परमेश्वर ने मानव जीवन को चार सामाजिक विभागों में नियोजित किया है। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। पुनः पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में चार आश्रम वर्णित हैं जो आध्यात्मिक जीवन के विभाग हैं। अतः भागवत धर्म का अर्थ है चार प्रकार के सामाजिक तथा आध्यात्मिक विभागों का वर्णाश्रम धर्म। मानव समाज के वे सभी सदस्य जो भागवत धर्म का कठोरता से पालन करते तथा श्री भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन यापन करते हैं वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्यों की सभ्यता पूर्ण है। ऐसे सब मनुष्य वृक्षों, पशुओं, मनुष्यों तथा अन्य जीवात्माओं में कोई भेदभाव नहीं रखते। पंडिता समदर्शिन श्री कृष्ण भावनामृत में सुशिक्षित होने से वे प्राणियों को समभाव से देखते हैं। जितना हम लोगों को अपना शरीर बचाने का हम लोग प्रयास करते हैं, सुरक्षित रखने का, उतना ही किसी दूसरे जीव के शरीर का वैल्यू है। और भगवान ने सबको ज्ञान दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य की जो ज्ञान है वो विकसित चेतना वाली है, और जो अन्य जीवों की जो चेतना है वो अविकसित चेतना के रूप में है, कम विकसित है। नहीं तो चींटी भी अगर जमीन पर चल रही है उसको थोड़ा सा आवाज दो वो रुक जाते हैं, उसको अनुभूति हो जाती है कि खतरा आया है, लेकिन वह अविकसित चेतना बताई गई है। लेकिन कीमत उतना ही है जितना हमारे शरीर की कीमत वैल्यू है, लेकिन देखने की तरीका संसार के लोगों की या भगवान के भक्तों की देखने की तरीका अलग है। 11वें स्कंद में नौ योगेश्वरों ने जो भक्ति योग का वर्णन किया है उसके अंदर एक श्लोक आया है, कहते हैं कि जो भगवान में सबको देखता है और जो सब में भगवान को देखता है वही शुद्ध है या वही उत्तम कोटि का वैष्णव है। अब ये विचार अपने ऊपर हम लोग लागू कर सकते हैं कि हम लोग कहां हैं, क्या सर्वत्र भगवान नजर आते हैं? अपने जीवन की जितनी हम कीमत करते हैं, अपने शरीर की जितनी सुरक्षा चाहते हैं, क्या अन्य जीवों के प्रति उतनी सहानुभूति है? नहीं। यही विभिन्नता हम लोगों को फिर संसार में उनको वापस लाएगी। इसलिए यहां आर्य आर्य शब्द श्लोक के अंदर भी, अनुवाद के अंदर भी, तात्पर्य के अंदर भी बताया गया है कि हमें सभ्य बनना है, किसी के प्रति दयाग्रता की भावना रखनी है। भक्ति कभी क्रूर बनाना नहीं सिखाते, वो दया से पूरा भरा हुआ वर्तन है। आर्यजन एक छोटे से वृक्ष तक को भी वृथा नहीं काटते, बड़े बड़े वृक्षों को इंद्रिय तृप्ति हेतु काटने की बात तो दूर रही, इस समय संपूर्ण विश्व में हत्या करना प्रबल बन चुका है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति हेतु वृक्षों की, पशुओं की, यहां तक कि मनुष्यों की भी हत्या करते हैं, किंतु यह आर्य सभ्यता नहीं है। जैसा कि कहा गया है कि स्थिर चर सत्व कदम वेश पृथक धीय, और पृथक धीय शब्द बताता है कि आर्य लोग जीव की उच्च तथा निम्न कोटियों में भेदभाव नहीं रखते थे। समस्त प्रकार के जीवों की रक्षा होनी चाहिए। सभी जीवों के रहने का अधिकार है, चाहे वे पशु हों या पौधे हों। लेकिन मनुष्य सबको मार करके अकेले रहना चाहता है कि हम सुखी से रहें। वो कहां से सुखी रह सकता है? आर्य सभ्यता का यह मूल सिद्धांत है, निम्न जीवों के अतिरिक्त जितने भी जीव मानवीय सभ्यता को प्राप्त हों चुके हैं उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के समाज में विभाजित करना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित श्री भगवान के उपदेशों का पालन करें। सीके के लिए गुण तथा कर्म को आधार बनाना चाहिए। प्रभु जी इसका क्या अर्थ लिखा हुआ सिक्के? तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं सीके के लिए गुण तथा कर्म को आधार बनाना चाहिए। इससे जो भी कह सकते हैं कि मनुष्य को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के गुण अर्जित करके तदनुसार कर्म करना चाहिए। चलिए बाद में उसमें देख लीजिएगा, आप मेरे को भी बताइएगा। यहाँ मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिक्के किस चीज के लिए संकेत कृपा जी कर रहे हैं। उनका कथन है कि बच्चों का इसी सभ्यता को आर्यों ने ग्रहण किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने के इच्छुक थे। यही परिपूर्ण सभ्यता है। आर्यगण न तो कृष्ण के उपदेशों से विपत होते हैं और न उन्हें श्री कृष्ण के संबंध में किसी प्रकार का संदेह है। और दूसरी आर्य की परिभाषा आप उपाध्याय लिखते हैं कि कृष्ण की कही हुई बात से कभी विचलित नहीं होते आर्य लोग जो हैं, और कृष्ण के भगवत्ता में कोई संदेह नहीं करते कि कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकता। असली आर्य की परिभाषा प्रभुपाद यह लिख रहे हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति है वह कृष्ण को ही भगवान मानता है या उनके कही हुई बात को से कभी विपत नहीं जाता, दूसरे रास्ते पर नहीं जाता है, वह आर्य है। किंतु अनार्य तथा अन्य आसुरी लोग हैं, वे भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसका कारण यही है कि उन्हें अन्य जीवात्माओं के मूल्य पर इंद्रिय तृप्ति करते रहने की शिक्षा दी गई है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, उनका एकमात्र कार्य इंद्रिय तृप्ति के हेतु सभी प्रकार की वर्जित गतिविधियां करना है, मतलब सारे नियम को तोड़ना है। क्योंकि नूनम प्रमत्तः, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में ही अपने को मस्त रखने के लिए सारे नियमों का वो खंडित, सारे नियमों को खंडित करते हैं, तोड़ते रहते हैं। उनके न तो कोई अन्य कार्य रहता न अभिलाषा रहती है। पिछले श्लोक में उनकी सभ्यता की भर्त्सना की गई है कि कह क्षेमो निज परयो किया न वार्था स्व पर दुहा धर्मेण, ऐसी सभ्यता से क्या लाभ जो अपने आप की तथा अन्यों की हत्या करती हो। अतः यह श्लोक प्रत्येक मनुष्य को आर्य सभ्यता का सदस्य बनने एवं श्री भगवान के उपदेशों को स्वीकार करने की सलाह देती है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उपदेशानुसार ही अपने सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक कार्य करे। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा श्री कृष्ण द्वारा इच्छित समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण भावनामृत भक्ति का यही अभिप्राय है, इसलिए हम भगवद गीता को यथा रूप में प्रस्तुत करते हैं और समस्त प्रकार के मनोरथों को पास नहीं भटकने देते। तो उपाधि की भाषा मूढ़ तथा उचक्के लोग भगवद गीता की अपने अनुसार व्याख्या करते हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मनाभव मदभक्तो मध्याजि माम नमस्कुरु, अर्थात सदैव मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो, तो उनकी टीका है हमें जिनकी शरण में जाना है वे कृष्ण नहीं है। इस प्रकार वे भगवद गीता का काल्पनिक अर्थ लगाते हैं, किंतु श्री कृष्ण मानवामृत आंदोलन मानव समाज के कल्याण हेतु भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के उपदेशों का अर्थात भागवत धर्म का कठोरता से पालन करता है। जो भगवद गीता को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कोई अर्थ निकालता है वह अनार्य है। अतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई भगवद गीता की टीकाओं का बहिष्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि यथा रूप में भगवद गीता का पालन करे। श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में 12-6-7 12 अध्याय के 6 और 7 श्लोक में कहते हैं कि ये तु सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्य मत परा अनन्यैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषा अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामिना चिरात पार्थ मया वेशित वेतसाम। जो संपूर्ण कर्म को मुझे अर्पित करके और अन्य भक्ति के परायण होकर नित्य निरंतर मेरा ही भजन चिंतन करते हैं, मुझ में एकांत भाव से मन को अनुरक्त करते हैं, हे पार्थ, मैं उन भक्तों को जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर में अति शीघ्र उद्धार करता हूं। श्रील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की